मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 28 नवंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार मेल मिला और वह मेल कुछ इस तरीके का था कि जिन्होंने भी यह मेल लिखा था, पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि बिल्कुल ही एक नए विषय की तरफ उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया है और इनफैक्ट मैं उसी विषय पर आज आप सबसे कुछ बातें भी करने जा रहा हूं। हालांकि उन्होंने ये बात सीधे सीधे लिखी नहीं थी, लेकिन जो मेल से उनकी जो भावनाएं व्यक्त हो रही थी उससे यह बात बहुत साफ तौर पर कोई भी समझ सकता था कि वे अपनी कुछ परेशानियों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं। हालांकि उन्होंने उल्लेख नहीं किया था, दरअसल उन्होंने जो प्रश्न पूछा था वो ये था कि सर, आज के समय में हम लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्राचीन काल के लोगों को भी इस तरह की परेशानियां होती थीं। ये उन्होंने पूछा है। अब आप देखिए कि प्रश्न तो बड़ा सरल सा है और हो सकता है कि इस प्रश्न को सुनकर आप थोड़ी सी व्यंगात्मक मुस्कान भी अपने चेहरे पर ले आए कि भला ये भी कोई पूछने की बात है, लेकिन मित्रों इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। वो मनोविज्ञान क्या है? देखो, वो मनोविज्ञान कुल मिलाकर ये है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं या कह लीजिए कि दुखी होते हैं, और यदि उसी समय हमें कोई हमसे भी अधिक दुखी व्यक्ति मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमारा दुख कम दिखाई देने लगता है। यूं कह लीजिए कि दुख तो वही रहता है लेकिन जो उसका असर है वह कम हो जाता है। मुझे याद आ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जो हमारे राष्ट्रीय कवि रहे हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है साकेत, और उस साकेत के एक अध्याय में उन्होंने उर्मिला के दुख का वर्णन किया है, उर्मिला के विरह का। लक्ष्मण राम के साथ चले गए थे, उर्मिला जी अयोध्या में रह गई थी जो उनकी पत्नी थी, तो उर्मिला जी के बारे में कोई लिखता नहीं है, उन्होंने उर्मिला जी के बारे में लिखा है। तो उर्मिला एक स्थान पर अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम जाओ और इस अयोध्या में जितनी भी ऐसी महिलाएं हों जिनके पति कहीं बाहर चले गए हैं और वो यहां बिना पति के रह रही हैं, उन्हें मेरे पास बुला कर ले आओ। अब आप देखिए कि इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान कुल मिलाकर के यही है कि जब समान दुख के लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, अपने दुख को एक दूसरे से बांटेंगे, कहेंगे, तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा और फिर यह भी लगेगा कि नहीं नहीं, मैं ही अकेली नहीं हूं, मैं ही अकेला नहीं हूं, बल्कि और भी बहुत से लोग भी दुखी हैं। और जब यह लगता है कि नहीं, और भी बहुत से लोग दुखी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर फिर अपना दुख तो कहीं ना कहीं, या यूं कह लीजिए कि स्वाभाविक सा मालूम पड़ने लगता है या कम मालूम पड़ने लगता है, जो भी हो, लेकिन उसका एक सकारात्मक प्रभाव होता है। सच पूछिए तो इनके इस मेल के पीछे यही मनोविज्ञान काम कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा होगा कि अगर पहले के व्यक्ति भी इसी तरह से दुखी रहते होंगे या इससे भी ज्यादा दुखी रहते होंगे तो शायद उन्हें अपने दुख को समझने में कुछ मदद मिल सके। और अगर मदद मिल जाती है, देखिए किसी भी चीज को समझने में, तो मान करके चलिए कि उसका जो दुष्प्रभाव है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, आइए मैं थोड़ी सी उन दुखों के बारे में अब आप बात कर रहा हूं जो सच में प्राचीन काल के लोग भुगतते थे। भुगतना ही शब्द मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, और सच पूछे तो प्राचीन काल के लोग ही क्या, हमारी पीढ़ी के लोग भी, यानी कि जिनका जन्म 1960 उसके आसपास हुआ है, उनके भी जो दुख थे वो आज के लोगों के दुख की तुलना में बहुत ज्यादा थे। अगर मैं हम लोगों के समय की जीवन पद्धतियों के बारे में आप सबसे चर्चा करने लगूं, और बिल्कुल अगर आपकी उम्र अभी 10, 15, 20 साल की भी हो, तो आपको लगेगा कि अरे क्या ये सच है? तो फिर आप लोग रहते कैसे थे? आप लोग जीते कैसे थे? आप लोगों का मन कैसे लगता था? आप ये प्रश्न करेंगे, और ये मैं आपको बिल्कुल अनुभव की बात बता रहा हूं। 25 साल के एक युवा ने सुनने के बाद यही प्रश्न किया था कि फिर आप लोग जीते कैसे थे? मैंने कहा, जीने के लिए दुख और सुख की जरूरत नहीं होती है, जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, और सांस बकायदे हम लोगों की चलती रहती थी, इसीलिए तो मैं इस उम्र में तुम्हारे सामने हूं। तो दोस्तों, कभी सच में हमें इन सब चीजों पर सोचना भी चाहिए। आप एक प्राचीन काल के व्यक्ति के बारे में सोच करके देखिए कि उनके जीवन के अस्तित्व के सामने, कितनी बड़ी चुनौतियां थी। देखिए, अस्तित्व की चुनौती जब होती है उससे बड़ी चुनौती और कुछ भी नहीं हो सकती। प्राचीन काल का व्यक्ति था, शिकार करके ही उसको भोजन मिल सकता था, शिकार करने जाता था, जानवरों से लड़ता था, वो जानवर उसे खा भी जाते होंगे, पता लगा शिकार करने गया है और वो खुद शिकार हो गया है, जंगल में रह रहा है, अंधेरा हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ों के नीचे रह रहे हैं वो लोग, गुफाओं में रह रहे हैं वो लोग, कोई भी जंगली जानवर आता है और खा जाता है, उठाकर ले जाता है और सुबह देखते हैं कि परिवार का ये सदस्य नहीं है, सांप आता है डस जाता है, व्यक्ति खत्म हो जाता है और आते हुए सांप को वो देख भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास रोशनी का कोई साधन नहीं है। वो पैदल चल रहा है, अचानक सामने गड्ढे में वो गिर जाता है और चूंकि गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है, उसके हाथ में टॉर्च नहीं है, बिजली की रोशनी नहीं है और पता लगा कि हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और घर वालों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो है भी या नहीं है। यहां से आप अस्तित्व की चुनौतियों के बारे में सोचना शुरू कीजिए और फिर आज की स्थिति में उसको कंपेयर कीजिए, तब आपको सही तरीके से पता लग पाएगा कि सच में आप क्या आज दुखी होने की स्थिति में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पूरे के पूरे जो दुख हैं आपके, जो परेशानियां हैं, वो माइंड के द्वारा क्रिएटेड की गई हैं। वस्तुतः है नहीं, माइंड के द्वारा क्रिएटेड है। 1950-60 के लोगों से पूछिए, वो आज थोड़े से वृद्ध हो गए होंगे, उतने वृद्ध भी नहीं है, उनकी स्मरण शक्ति बिल्कुल ठीक होगी। कल्पना करके देखिए, उन समय रोजगार के कोई साधन मौजूद नहीं थे, लोग भूखे मरते थे। ब्रिटिश पीरियड में आप पढ़ेंगे कि पता लगा प्लेग फैला और पूरे के पूरे गांव साफ हो गए, इलाज का कोई साधन ही नहीं, पूरा गांव साफ हो गया। अकाल पड़ा और अकाल में पता लगा कि 50-50 लाख लोग मर गए। सोचिए, थोक के भाव लोग अकाल में मर रहे हैं, प्लेग की बीमारियों में मर रहे हैं। आज क्या ऐसी स्थिति है? हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कितने एक्टर और एक्ट्रेसेस टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जैसी सामान्य सी बीमारियों में मर गए। मैं सामान्य सी इसलिए कह रहा हूं कि आज यह बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है, इसके इलाज हैं। पता नहीं कितनी प्रतिभाएं केवल भारत की नहीं बल्कि विश्व की सामान्य सी बीमारियों के कारण खत्म हो गई, सामान्य सी बीमारियों के कारण। आज हमारे पास सारी चीजों के इलाज है, हम हार्ट तक ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अकाल में आपको उस तरह से मृत्यु होते हुए सुनाई नहीं पड़ेगा, सरकार सहायता दे रही है, पढ़ने के लिए स्कूल हैं, घरों में बिजली है, इलाज के सारे साधन हैं, घर घर में नल से पानी आ रहा है, नल से नहीं भी आ रहा है तो गांव में हैंडपंप बन गए हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। और पहले सोच करके देखिए कि राजा महाराजा और जमींदारों के जब युग हुआ करते थे, स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचती थी, वो किसी के हाथ से भी कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी अत्याचार होगा, आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, आपकी हत्या कर दी जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं, उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते, किसी को नहीं बता सकते, कोई आपकी सुनेगा भी नहीं। और आज क्या आज ऐसी स्थिति है? क्या आज किसी भी व्यक्ति को इतना ज्यादा इस तरीके से डर डर कर जीने की जरूरत है? दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत प्रश्न है। मेरे पास समय की एक सीमा है, मैं और दुखों के बारे में बताने की स्थिति में नहीं हूं, अदरवाइज फेहरिस्त तो इतनी लंबी है अगर आप उनकी गिनती करेंगे कि आप पढ़ते पढ़ते आपकी सांस फूल जाएगी। किसी की मृत्यु हो गई है, अब आप कैसे सूचना देंगे? चिट्ठी भेज रहे हैं, 7 दिन में 10 दिन में 15 दिन में चिट्ठी पहुंच रही, चिट्ठी पहुंच भी नहीं रही है, और 1-2 साल के बाद जब आप उनसे मिल रहे हैं तो कह रहे कि नहीं, मुझे तो जानकारी ही नहीं है। और अभी आप यहां व्हाट्सअप कीजिए, फोन कीजिए और तुरंत उसे खबर दे दीजिए। कल्पना करके देखिए कि आज सच में हमारे पास जीवन की कितनी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज का व्यक्ति इस सुविधाओं के समानांतर सुखी नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां है, हमें यही सोचना होगा कि प्रॉब्लम कहां है। और दोस्तों, बस आज के इस एपिसोड को मैं इन छोटी सी दो पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगा। उसे सिर्फ अपना ही गम है, उसे सिर्फ अपना ही गम है, सच वह जानता कितना कम है। तो दोस्तों, अब आप मुझे इजाजत दें। नमस्कार।